एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसे उपन्यास पर बात करने जा रहे हैं जो अमेरिकी साहित्य में कह सकते हैं एक मील का पत्थर है, थॉमस पिंचन का ग्रेविटीज रेनबो।
जी हाँ, 1973 में आई थी ये किताब और आते ही इसने काफी हलचल मचा दी थी साहित्य जगत में।
बिल्कुल, और लेखक थॉमस पिंचन वो खुद भी तो एक रहस्य हैं। 50 साल से ज्यादा हो गए पब्लिक लाइफ से एकदम दूर।
हाँ, उनका काम ही उनकी पहचान है ऐसा वो मानते हैं, और उन्हें पोस्ट मॉडर्निज्म यानी उत्तर आधुनिकतावाद का एक बहुत बड़ा हस्ताक्षर माना जाता है।
अच्छा, ये पोस्ट मॉडर्निज्म मतलब क्या है ये असल में?
देखिए, ये साहित्य का वो अंदाज है जो पारंपरिक तरीकों को तोड़ता है। सीधी कहानी कहने के बजाय ये चीज़ों पर सवाल उठाता है, गंभीर विषयों को भी कई बार अजीब से ह्यूमर या पॉप कल्चर से मिला देता है।
तो पिंचन के उपन्यास ऐसे ही हैं?
बिल्कुल, ज्ञान का भंडार कह लीजिए, इतिहास, साइंस, मैथ, फिर जासूसी कथाएं, यहाँ तक के कार्टून का भी जिक्र मिल जाएगा।
वाह, और भाषा सुना है वो भी काफी।
हाँ, भाषा तो गजब है, कभी एकदम दिमागी तौर पर आपको उलझा देगी तो कभी जमीनी मजाक मिलेगा। और एक थीम जो बार बार आता है वो है पैरानोया, एक वहम सा।
जैसे कोई है जो पर्दे के पीछे से सब कंट्रोल कर रहा है।
बिल्कुल, और साथ ही उन लोगों के लिए गहरी हमदर्दी भी है जो हाशिए पर हैं, जिन्हें वो प्रीटराइट कहते हैं, जिन्हें किस्मत ने जैसे छोड़ दिया हो।
और एंट्रोपी का जिक्र भी सुना है मैंने उनके कामों में।
हाँ, एंट्रोपी चीजों का, व्यवस्थाओं का धीरे धीरे बिखर जाना, अव्यवस्था की तरफ बढ़ना, और इसी अराजकता में मायने ढूंढने की कोशिश। और हाँ, वो बड़ी अनदेखी ताकतें जिन्हें वो डैम यानी वे लोग कहते हैं, उनका डर।
तो ग्रेविटीज रेनबो को उनका मैग्नम ओपस सबसे बड़ा काम माना जाता है?
हाँ बिल्कुल, 1974 में नेशनल बुक अवार्ड भी मिला इसे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पुलित्जर प्राइज कमेटी ने इसे रेकमेंड तो किया, पर बोर्ड ने इसे क्या कहा था उन्होंने?
हाँ, कुछ अपठनीय, जरूरत से ज्यादा लिखा हुआ और अश्लील जैसा।
सोचिए, और शायद इसी विवाद ने इसे और भी ज्यादा प्रतिष्ठित बना दिया।
हो सकता है। खैर, ये उपन्यास है किस बारे में? इसका दायरा बहुत बड़ा लगता है।
बहुत बड़ा, ये एक साथ ऐतिहासिक उपन्यास भी है, साइंस फिक्शन भी है और दार्शनिक पड़ताल भी। कहानी कहने की सीमाओं को ये वाकई बहुत दूर तक ले जाता है।
तो आज हम इसी घने और उलझे हुए ताने बाने को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ग्रेविटीज रेनबो की कहानी, इसके किरदार, इसके विषय।
हाँ, कोशिश करते हैं इस दुनिया में उतरने की। ये चुनौतीपूर्ण तो है, पर यकीनन सोचने पर मजबूर करती है।
बिल्कुल, तो कहाँ से शुरू होती है कहानी?
कहानी हमें ले जाती है दूसरे विश्व युद्ध के बिल्कुल आखिरी महीनों में। साल है 1944-45 और जगह है लंदन।
ओ, यानी ब्लिट्स का दौर।
हाँ, और शहर पर जर्मनी के V2 रॉकेटों का खौफ है।
हाँ।
और इन V2 रॉकेटों की सबसे अजीब बात पता है क्या थी?
क्या?
ये आवाज की रफ्तार से भी तेज थे।
क्या मतलब, आवाज से तेज?
हाँ, यानी धमाका पहले होता था और रॉकेट के आने की आवाज वो बाद में सुनाई देती थी।
अरे बापरे, ये तो कारण और परिणाम का पूरा क्रम ही उलट गया।
बिल्कुल, और इसने शहर में एक अजीब सा डर, एक गहरा वहम पैदा कर दिया था कि कुछ बहुत गड़बड़ है, कुछ ऐसा हो रहा है जो समझ से परे है।
और इसी माहौल में कहानी का मुख्य रहस्य सामने आता है ना? वो अमेरिकी अफसर।
हाँ, लेफ्टिनेंट टायरोन स्लॉथ्रॉप एक अमेरिकन फौजी अफसर है, थोड़ा भोला सा, मजाकिया टाइप का, लेकिन उसके साथ एक बहुत ही अजीब, बल्कि कहें तो डरावनी बात जुड़ी है।
वो क्या?
ऐसा लगता है, या कहें कि ऐसा पैटर्न देखा गया है कि जिन जिन जगहों पर स्लॉथ्रॉप के यौन संबंध बनते हैं,
हाँ,
ठीक उन्हीं जगहों पर बाद में V2 रॉकेट आकर गिरते हैं।
ये क्या बात हुई? उसके प्रेम संबंधों का नक्शा और रॉकेट गिरने की जगहों का नक्शा एक जैसा है।
हूबहू, अविश्वसनीय लगता है, पर यही उपन्यास का सेंट्रल मिस्ट्री है, ये हो कैसे सकता है।
यहीं से कहानी फिर आगे बढ़ती होगी, जाहिर है ये बात किसी के तो नोटिस में आएगी।
बिल्कुल, स्लॉथ्रॉप का ये अजीब कनेक्शन एक खुफिया ब्रिटिश एजेंसी है, द व्हाइट विजिटेशन, उसका ध्यान खींचता है।
द व्हाइट विजिटेशन, नाम तो बड़ा रहस्यमय है।
और एजेंसी भी वैसी है, इसमें वैज्ञानिक हैं, जासूस हैं, फौजी अफसर हैं, यहाँ तक कि कुछ रहस्यवादी टाइप के लोग भी हैं। और इनमें खास किरदार है एडवर्ड पॉइंट्समैन।
पॉइंट्समैन, ये कौन है?
वो एक मनोवैज्ञानिक है जो पावलोव के सिद्धांतों का कट्टर अनुयायी है।
पावलो, अच्छा वो कुत्ते और घंटी वाला प्रयोग, कंडीशनिंग वाला।
हाँ हाँ वही। पॉइंट्समैन का मानना है कि स्लॉथरोप को एक चमत्कार नहीं बल्कि एक कंडीशन्ड प्राणी है। उसे शक है कि स्लॉथरोप के बचपन में किसी जर्मन वैज्ञानिक ने, जिसका नाम डॉक्टर लाज़लो ज़ैम्फ बताया जाता है, उस पर कोई गुप्त प्रयोग किया था।
प्रयोग?
हाँ।
कैसा प्रयोग?
कोई ऐसा प्रयोग जिससे स्लॉथरोप की कामेच्छा, सेक्स ड्राइव और रॉकेट गिरने की घटनाओं के बीच एक तरह का साइकोसोमैटिक यानी मानसिक और शारीरिक कनेक्शन बन गया हो। पॉइंट्समैन को लगता है कि स्लॉथरोप ही V2 के रहस्य को समझने की कुंजी है।
ओह, तो यहीं से टकराव शुरू होता है, एक तरफ सिस्टम, पॉइंट्समैन।
हाँ, जो स्लॉथरोप को समझना और कंट्रोल करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ है बेचारा स्लॉथरोप। शुरू में तो उसे कुछ पता ही नहीं है कि उसके साथ हो क्या रहा है,
लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता होगा।
बिल्कुल, उसे धीरे धीरे पता चलता है कि उसे इस्तेमाल किया जा रहा है, उस पर नजर रखी जा रही है, और फिर उसकी यात्रा एक तरह से आजादी और सच्चाई की खोज बन जाती है,
अपनी इस कंडीशनिंग का सच जानने की।
हाँ,
और शायद उस खास V2 रॉकेट की भी, जिसका सीरियल नंबर 0000 है।
हाँ, उस पौराणिक रॉकेट 0000 का रहस्य पता लगाने की।
इस पूरी जासूसी और वैज्ञानिक खींचतान के बीच क्या कोई मानवीय पक्ष भी है कहानी में?
हाँ है, एक किरदार है रॉजर मैक्सिको। वो एक स्टैटिस्टिशियन है, आंकड़ों का जानकार। V2 हमलों की संभावना का हिसाब लगाने के लिए पॉइजन इक्वेशन जैसी गणितीय विधियों का इस्तेमाल करता है।
अच्छा, तो वो भी पॉइंट्समैन जैसे ही है, हर चीज को कंट्रोल करने वाला?
नहीं, बिल्कुल नहीं। पॉइंट्समैन के उलट मैक्सिको मानता है कि दुनिया पूरी तरह समझी या कंट्रोल नहीं की जा सकती। इसमें बहुत कुछ रैंडम है, अनिश्चित है। वो आंकड़ों की सीमाओं को समझता है। एक तरह से वो उपन्यास का मानवीय चेहरा है।
और उसका जेसिका स्वान लेक के साथ एक रिश्ता भी है शायद।
हाँ, रॉजर और जेसिका का रिश्ता, वो इस जटिल और अक्सर ठंडी लगने वाली कहानी में असली गर्म जोशी भरे मानवीय जुड़ाव का एक दुर्लभ खूबसूरत लम्हा है। उनका प्यार युद्ध के साये में उस खतरे के बीच पनपता है।
लेकिन
जैसे ही शांति लौटती है और समाज के पुराने ज्यादा कठोर नियम कायदे वापस आते हैं, उनका रिश्ता धीरे धीरे बिखरने लगता है। ये दिखाता है कि कैसे बड़े सिस्टम, बड़ी ताकतें अक्सर व्यक्तिगत रिश्तों और खुशियों को कुचल देती हैं।
ये तो दुखद है। और स्लॉथरोप का क्या, उस पर प्रयोग चल रहे हैं?
हाँ, उस पर तरह तरह के टेस्ट होते हैं। उसे मनोवैज्ञानिक रूप से मैनिपुलेट किया जाता है। उसे धीरे धीरे ये समझ आने लगता है कि वो किसी बहुत बड़े खेल का महज एक मोहरा है।
फिर उसे फ्रांस भेजा जाता है ना, किसी कैसीनो में?
जी, फ्रांस के रिवेरा में एक कैसीनो है जिसका नाम भी बड़ा अजीब है, कैसीनो हरमन गोरिंग। उसे वहां एक मिशन पर भेजा जाता है, पर असल में वो भी पॉइंट्समैन का ही एक और प्रयोग साबित होता है।
और यहीं फ्रांस में शायद स्लॉथरोप का सब्र जवाब दे जाता है।
बिल्कुल, उसे महसूस होने लगता है कि पॉइंट्समैन और सिस्टम का जाल उसे चारों तरफ से कसता जा रहा है। वो अब इसे और बर्दाश्त नहीं करना चाहता,
तो वो भाग जाता है।
हाँ, वो फैसला करता है भागने का। ये स्लॉथरोप के किरदार के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब वो सिर्फ एक निष्क्रिय शिकार नहीं है, वो अब खुद कुछ करने की कोशिश कर रहा है, भले ही रास्ता साफ ना हो। वो अपनी मौत का नाटक करता है और भाग निकलता है।
यहां से उसकी अपनी पर्सनल खोज शुरू होती होगी।
हाँ, अब वो सिस्टम से भाग रहा है, लेकिन साथ ही अपने अतीत के राज, अपने कंडीशनिंग की वजह और खासकर उस रहस्यमयी V2 रॉकेट 0000 के पीछे पड़ जाता है।
और उसे कुछ पता चलता है?
हाँ, उसे रॉकेट के बहुत ही गुप्त पुर्जे S. गेराट के बारे में पता चलता है। इसे श्वार्ट्स गेराट यानी काला यंत्र भी कहते हैं। ये रॉकेट 0000 का एक अहम हिस्सा है।
और इसी दौरान वो कार्जा बोगेसियस से मिलता है।
जी, कार्जा बोगेसियस एक डच डबल एजेंट। स्लॉथरोप के साथ उसका रिश्ता भी बड़ा उलझा हुआ है। क्या वो सच में उसे पसंद करती है या सिर्फ अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही है, यह सवाल बना रहता है।
उसका कनेक्शन किसी और ग्रुप से भी है?
हाँ, उसका कनेक्शन श्वार्ट्स कमांडो नाम के एक और रहस्यमयी ग्रुप से है, और शायद कार्ची के पास रॉकेट 0000 के बारे में कुछ अहम जानकारी है।
अपनी पहचान छुपाने के लिए स्लॉथरोप भेज भी बदलता है।
हाँ, कई सारे। कभी वो रॉकेट मैन बन जाता है, तो कभी एक अजीब सा पिग धीम वाला सुपर हीरो। पिंचन का ह्यूमर यहाँ भी झलकता है।
तो वो यूरोप में भटक रहा है?
हाँ, यूरोप के अंडरवर्ल्ड में। और आखिरकार वो पहुंचता है द जोन।
द जोन, ये नाम बार बार आ रहा है, ये क्या है?
जोन उपन्यास का दिल है, और शायद सबसे जटिल हिस्सा भी। ये युद्ध के बाद का जर्मनी है, खासकर वो इलाके जिन पर मित्र देशों का कब्जा है। लेकिन ये कोई व्यवस्थित कब्जा नहीं है, यहाँ सब कुछ टूट चुका है। सरकारें, अर्थव्यवस्थाएं, देशों की सीमाएं, विचारधाराएं, सब ध्वस्त।
यानी पूरी तरह अराजकता, केओस।
बिल्कुल, ये पिंचन की एंट्रोपी की अवधारणा का जीता जागता रूप है। जैसे कोई सिस्टम बिना बाहरी ऊर्जा के धीरे धीरे बिखर जाता है, वैसे ही ये जोन है। व्यवस्था पूरी तरह ढह चुकी है।
सुनने में तो ये बहुत खतरनाक जगह लगती है।
खतरनाक तो है, लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि सारे नियम टूट चुके हैं, यहाँ एक तरह की अजीब सी आज़ादी भी है। और यहीं इसी जोन में स्लॉटस्ट्रोप की रॉकेट 00 और एस ग्रेट की खोज तेज होती है।
लेकिन कहानी शायद और उलझ जाती है यहाँ।
हाँ, बहुत ज्यादा। जैसे जैसे स्लॉटस्ट्रोप आगे बढ़ता है, कहानी और ज्यादा टुकड़ों में बंटने लगती है। कई सारी उपकथाएं शुरू हो जाती हैं, फ्लैशबैक आते हैं, सपनों जैसे सीन आते हैं, सब कुछ एक साथ चलता है।
और उसे ढूंढना भी जा रहा है।
हाँ, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, कई देशों के जासूस उसके पीछे पड़े हैं। वो एक शिकार है जो शिकारी भी बनने की कोशिश कर रहा है।
जोन में हम कुछ और किरदारों से भी मिलते हैं, वो श्वार्ट्ज कमांडो।
हाँ, श्वार्ट्ज कमांडो ये बहुत दिलचस्प ग्रुप है। ये दक्षिण पश्चिम अफ्रीका यानी आज के नामीबिया के हेरेरो आदिवासी लोग हैं।
अफ्रीका से जर्मनी कैसे?
जर्मन उपनिवेशवाद के समय इन्हें या इनके पूर्वजों को जर्मनी लाया गया था। अब युद्ध के बाद की इस अफरातफरी में ये लोग अपना खुद का रॉकेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
अपना रॉकेट, कमाल है।
हाँ, इनकी कहानी उपनिवेशवाद के इतिहास, नस्लीय भेदभाव और इस विडंबना को सामने लाती है कि कैसे उत्पीड़ित लोग अपने उत्पीड़क के ही औजारों का इस्तेमाल करके मुक्ति की राह ढूंढते हैं। इनके लीडर हैं ओबर्स्ट एंजियन,
बहुत गहरा, और वो जर्मन इंजीनियर फ्रांस पोकलर।
हाँ, पोकलर वो एक रॉकेट इंजीनियर है जिसने V2 बनाने में नाजियों की मदद की थी। उसका किरदार विज्ञान और नैतिकता के बीच के मुश्किल रिश्ते को दिखाता है।
उसने समझौता किया।
हाँ, उसने अपने काम के लिए अपनी अंतरात्मा से समझौता किया। नाजी उसे कंट्रोल करने के लिए उसकी बेटी इल्से से मिलने की इजाजत देते हैं, लेकिन साल में सिर्फ एक हफ्ते के लिए। वो अपराध बोध से दबा हुआ है और शायद कहीं ना कहीं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता है।
और फिर है कहानी का विलन, कह सकते हैं कैप्टन ब्लिसेरो।
हाँ, ब्लिसेरो, उसका असली नाम वीस्मिन था। वो एक SS अफसर था, V2 बैटरी का कमांडर और रॉकेट 00000 प्रोजेक्ट का आर्किटेक्ट। वो उपन्यास के अंधेरे पक्ष का प्रतीक है, पूरी तरह से निराशावादी। उसमें एक तरह की डेथ विश यानी मौत की कामना दिखती है।
मौत की कामना, वो क्या चाहता है?
वो सोचता है कि ये जीवन और मृत्यु का जो गंदा चक्र है, इससे निकलने का एक ही रास्ता है, परम मुक्ति, ट्रांसेंडेंस। और इसके लिए वो एक बहुत ही भयावह योजना बनाता है।
क्या योजना?
वो अपने युवा प्रेमी गॉटफ्रीड को रॉकेट 00000 के अंदर बिठाकर उसे अंतरिक्ष के खालीपन, उस शून्य में लॉन्च कर देना चाहता है।
ये भगवान, ये तो बहुत ही विकृत है। प्यार, ताकत और मौत का ऐसा भयानक संगम।
बिल्कुल, और इस सब पागलपन और खोज के बीच स्लॉथ्रोप का क्या होता है?
हाँ, स्लॉथ्रोप, उसका क्या हुआ?
जोन की वो जो अराजकता है और लगातार पीछा किया जाना, इससे स्लॉथ्रोप का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। उसकी अपनी पहचान, उसका सेल्फ, वो जैसे बिखरने लगता है, टुकड़े टुकड़े होने लगता है।
मतलब
वो एक व्यक्ति से ज्यादा एक किंवदंती, एक अफवाह जैसा बन जाता है। और सबसे अजीब बात यह है कि वो रॉकेट 00000 के रहस्य के जितना करीब पहुंचता है, उतना ही वो खुद बिखरता जाता है।
और आखिर में
वो कहानी से जैसे गायब हो जाता है।
गायब मतलब मर जाता है या
पता नहीं, पिंचन साफ साफ नहीं बताते। वो बस फेड आउट हो जाता है, कहानी के पन्नों से लुप्त हो जाता है।
ये तो बहुत अजीब है, इसका क्या मतलब हो सकता है?
शायद ये दिखाने का तरीका है कि कैसे सिस्टम, वो देम, व्यक्ति को इस्तेमाल करके बस फेंक देते हैं। वो प्रीटेराइट का उस हाशिए पर पड़े इंसान का एक दुखद अंत है, व्यक्ति का पूरी तरह से विखंडित हो जाना, अपनी पहचान खो देना।
स्लॉन्थ्रोप के गायब होने के बाद कहानी खत्म हो जाती है?
नहीं, कहानी चलती है लेकिन फोकस बदल जाता है। अब एक नया विचार उभरता है, द काउंटर फोर्स।
काउंटर फोर्स यानी प्रतिशक्ति।
हाँ, ये कुछ किरदारों का एक ढीला ढाला सा, असंगठित सा नेटवर्क है। इसमें रोजर मेक्सिको है, कुछ जर्मन अराजकतावादी हैं और भी कई लोग। ये लोग मिलकर देम यानी वो अदृश्य ताकतें, वो सिस्टम, वो कॉरपोरेट और फौजी हित उनका विरोध करने की कोशिश करते हैं।
क्या वो कामयाब होते हैं?
ज्यादा नहीं, उनके प्रयास बिखरे हुए हैं, उनमें कोई खास तालमेल नहीं है और सिस्टम की ताकत उनके मुकाबले बहुत ज्यादा है। ये शायद प्रतिरोध की निरर्थकता या कम से कम उसकी मुश्किलों पर एक काफी निराशाजनक टिप्पणी है।
कहानी अब कहां जाती है?
कहानी अब समय और स्थान में और भी ज्यादा उछल कूद करने लगती है। हम अचानक 17वीं सदी के अमेरिका में स्लॉथ्रोप की किसी पूर्वज को देखते हैं, तो अगले ही पल युद्ध के बाद के लॉस एंजलिस में कोई ड्रग डील चल रही होती है
और वो रॉकेट 0000 का लॉन्च, ब्लिसिरो और गॉटफ्रीड वाला।
हाँ, आखिरकार उस भयानक लॉन्च की कहानी भी सामने आती है। ब्लिसिरो गॉटफ्रीड को रॉकेट में बिठाकर अंतरिक्ष में भेज देता है और फिर आता है उपन्यास का सबसे अप्रत्याशित और शायद सबसे डरावना अंत।
क्या होता है अंत में? ऐसा क्या है?
अचानक कहानी का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। वो वर्तमान में आ जाता है, यानी 1970 का दशक जब किताब लिखी गई, और ऐसा लगता है जैसे हम यानी पढ़ने वाले लॉस एंजलिस के किसी सिनेमा हॉल में बैठे हैं, कोई फिल्म देख रहे हैं।
हाँ, पाठक।
हाँ, और अचानक स्क्रीन पर फिल्म जैसे जल जाती है, रुक जाती है और फिर खामोशी से बिना किसी आवाज के एक V2 रॉकेट टेक्नोलॉजी से आई मौत का परम प्रतीक सीधे हमारे ऊपर यानी पाठक के ऊपर गिर रहा है।
क्या हमारे ऊपर?
हाँ,
मतलब चौथी दीवार टूट जाती है।
बिल्कुल,
किताब एक अधूरे वाक्य पर खत्म होती है जैसे कोई गाना चल रहा हो और बीच में ही कट जाए।
ये अंत पाठक को सीधे कहानी के खतरे में खींच लेता है। ये जैसे कहता है कि ये खतरा सिर्फ किताब के पन्नों में नहीं है, ये यहीं है, अभी है, तुम्हारे सिर पर मंडरा रहा है।
ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वाकई ये उपन्यास तो विषयों का एक पूरा जाल है। पैरानोया और साजिश की थ्योरीज, ये तो जैसे हर तरफ हैं।
हाँ, और उपन्यास ये सवाल छोड़ जाता है, क्या ये वहम सिर्फ पागलपन है या आज की दुनिया को समझने का यही एक तरीका बचा है? क्या वाकई कोई छुपी हुई अभिजात ताकत डैम सब कुछ कंट्रोल कर रही है या ये सब सिर्फ रैंडम केओस है, अराजकता है? पिंचन कोई आसान जवाब नहीं देते।
हाँ, वो कहावत याद आती है उपन्यास से, अगर वे तुमसे गलत सवाल पूछवा सकते हैं तो उन्हें जवाबों की चिंता करने की जरूरत नहीं है।
बिल्कुल, और टेक्नोलॉजी का थीम, खासकर V2 रॉकेट, वो कैसे इंसानियत से ऊपर उठकर मौत और कंट्रोल का प्रतीक बन जाती है।
सही का, पिंचन जैसे दिखाते हैं कि कैसे आधुनिक सिस्टम, वैज्ञानिक, कॉरपोरेट, सैन्य, इंसान को सिर्फ एक डेटा पॉइंट या मशीन का पुर्जा समझने लगते हैं। स्लॉथ्रोप का वो जो विघटन है, उसका बिखर जाना, वो इसी अमानवीकरण का चरम उदाहरण है।
और एंट्रोपी वाला विचार, वो जोन में तो साफ दिखता है पर शायद पूरी कहानी की संरचना में भी है ना? सब कुछ जैसे टूटता और बिखरता हुआ।
हाँ, थर्मोडायनामिक्स का वो सिद्धांत कि हर बंद सिस्टम अव्यवस्था की ओर बढ़ता है। पिंचन इसे सभ्यताओं, राजनीतिक व्यवस्थाओं, यहां तक कि किरदारों की निजी पहचान पर भी लागू करते दिखते हैं। और वो कंट्रोल बनाम आजादी का संघर्ष, इलेक्ट बनाम प्रीटराइट,
चुने हुए बनाम त्यागे हुए, उपन्यास जैसे इन त्यागे हुए हाशिए पर पड़े लोगों का पक्ष लेता है ना? उनकी सहन शक्ति, उनके ह्यूमर, उनकी अराजक इंसानियत का जश्न मनाता है।
बिल्कुल, और मौत और उससे पार जाने की वो जो इच्छा है, खासकर ब्लिसरों में, वो भी एक अहम थीम है।
हाँ, जैसे वो जिंदगी की इस आपाधापी, इस गंदगी से निकलकर अंतरिक्ष की उस ठंडी निर्जीव पवित्रता में विलीन हो जाना चाहता हो। रॉकेट का वो पथ, वो परवलय, ग्रेविटीज रेनबो शायद इसी नामुमकिन इच्छा का प्रतीक है। प्रकृति को चुनौती देकर एक तरह की बांझ तकनीकी अमरता पाने की कोशिश, जो असल में जीवन का ही नकार है।
और नस्ली उत्पीड़न और साम्राज्यवाद का मुद्दा भी है श्वार्ट्ज़ कमांडो के जरिए।
हाँ, हीरो जनसंहार का इतिहास और उसका द्वितीय विश्व युद्ध की टेक्नोलॉजी से जुड़ना, ये दिखाता है कि इतिहास के जुल्म कैसे भविष्य को भी प्रभावित करते हैं।
इतने सारे विचार और कहानी कहने का तरीका भी उतना ही चुनौतीपूर्ण।
बिल्कुल, मल्टीपल आवाजें हैं, नरेटर बदलता रहता है, कहानी सीधी रेखा में नहीं चलती, आगे पीछे कूदती है, इतिहास में जाती है, सपनों में खो जाती है।
और भाषा, उसमें भी तो बहुत प्रयोग हैं।
हाँ, भाषा तो अद्भुत है। एकदम तकनीकी शब्दावली, केमिस्ट्री, रॉकेट साइंस, साइकोलॉजी और साथ ही साथ सड़क छाप भाषा, श्लेष, पंज, भद्दे मजाक, सब कुछ एक साथ घुला मिला हुआ है।
और टोन भी बदलता रहता है।
हाँ, अचानक एक पल में आप गहरे दार्शनिक चिंतन में डूबे होंगे, अगले ही पल कोई स्लैपस्टिक कॉमेडी जैसा सीन आ जाएगा।
बहुत सारे प्रतीक भी हैं, V2 रॉकेट, मंडला के चित्र।
हाँ, और अनगिनत संकेत, अल्यूजन्स, इतिहास से, विज्ञान से, फिल्मों से, किंग कॉन्ग, विज़र्ड ऑफ ऑज, मिथकों से, दूसरे साहित्य से, बीच बीच में गाने और कविताएं भी हैं।
और वो ब्लैक ह्यूमर?
हाँ, काली विषयों पर हंसी मजाक, युद्ध की बेतुकी बातों पर, नौकरशाही की गड़बड़ियों पर, पिंचन त्रासदी और कॉमेडी को ऐसे मिलाते हैं कि आप हंसें या रोएं समझ नहीं आता।
उपन्यास की पहली लाइन ही देखिए, आसमान में एक चीख सुनाई देती है। ऐसा पहले भी हुआ है, लेकिन अब इसकी तुलना करने के लिए कुछ भी नहीं है। ये शुरुआती टोन सेट कर देती है, वो उल्टा कारण कार्य, वो टेक्नोलॉजी का आतंक।
तो कुल मिलाकर इसे पढ़ने का अनुभव कैसा है? जाहिर है आसान तो बिल्कुल नहीं लगता।
नहीं, आसान तो नहीं है। शुरू में तो सिर घूम सकता है, इतनी जानकारी, इतनी उलझी हुई कहानी, लगातार बदलते नजरिए, पाठक अभिभूत हो सकता है, और शायद पिंचन चाहते भी यही हैं।
लेकिन अगर कोई पाठक इसमें टिका रहे
तो इसका असर बहुत गहरा होता है। उन प्रीटराइट किरदारों के लिए एक अजीब सी उदासी और हमदर्दी पैदा होती है। रॉजर और जेसिका के प्यार जैसे जो छोटे छोटे मानवीय पल हैं, वो उस पूरी अराजकता के बीच जैसे रोशनी की किरण की तरह लगते हैं। और उस काले मजाक से भी एक अजीब सा कैथारसिस, एक तरह की राहत मिलती है। वो लाइन, तुमने कभी केनोशा किड नहीं किया, का भी जिक्र आता है।
हाँ, वो जैसे किसी खोई हुई प्रामाणिकता, किसी गुजरे हुए वक्त की टीस की तरह है।
ये उपन्यास पाठक को किन सवालों के साथ छोड़ता है?
बहुत सारे बेचैन करने वाले सवालों के साथ। ये हमें इतिहास, टेक्नोलॉजी, ताकत के बारे में नए सिरे से सोचने पर मजबूर करता है। ये हकीकत की प्रकृति पर ही सवाल उठाता है। क्या हम अपनी मर्जी के मालिक हैं या किसी अनदेखे बड़े सिस्टम द्वारा खींची जा रही कठपुतलियां हैं?
और वो अंत वाली छवि, पाठक पर गिरता हुआ रॉकेट, वो तो अविस्मरणीय है।
हाँ, वो चौथी दीवार को तोड़कर जैसे ये कहती है कि किताब में वर्णित नियंत्रण और विनाश की ताकतें सिर्फ अतीत की बात नहीं है, वो एक आसन्न खतरा है, वर्तमान का खतरा है। ये दुनिया के भयानक अंतर संबंध और साथ ही उसकी खूबसूरत, अराजक, नाजुक इंसानियत दोनों का एहसास गहरा कर देती है।
वो परवलय वाली लाइन भी बहुत शक्तिशाली है।
हाँ, लेकिन ये एक वक्र है जिसे उनमें से प्रत्येक महसूस करता है अचूक रूप से। ये परवलय है, फिर भी वे हमेशा इसके नीचे चलते हैं, इसकी अपनी श्वेत शाम बुरी खबर के लिए आरक्षित। ये जैसे नियति, भाग्य और शायद टेक्नोलॉजी के बनाए रास्ते पर चलते इंसान की बेबसी का रूपक है।
तो अगर हम संक्षिप्त में सोचें तो ये उपन्यास हमें क्या सिखाता है या सोचने पे मजबूर करता है? शायद ये कि कैसे तकनीक और सत्ता की व्यवस्थाएं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को चुनौती देती हैं।
बिल्कुल, और कैसे इस जटिलता और बिखराव के बीच भी अर्थ की खोज जारी रहती है। ये दिखाता है कि नियंत्रण के उस विशाल ताने बाने में मानवीय भावना, मानवीय जज्बा कैसे जिंदा रहने की कोशिश करता है, संघर्ष करता है।
यह सम्राट यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।